जब भारत सरकार ने अभी COVID-19 के लिए राष्ट्रीय तालाबंदी की घोषणा की थी, तो कई प्रवासी श्रमिकों ने अपने घर वापस जाने का फैसला किया। शहरों से गांवों की तरफ इस तरह पलायन से एक अलग तरह की इमरजेंसी पैदा हो गई है। फिलहाल वहां जमीनी स्थिति क्या है?
जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, इस ऐड की परियोजनाएं चल रही हैं, वहां के बारे में, खासकर शुरुआत के दिनों में लॉकडाउन के बाद जब कुछ प्रवासी मजदूर गांव लौटने लगे थे, तब के बारे में हम अपना एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। तो हमने मूल रूप से दो चीजें देखी। एक तो जैसे झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के जो सुदूर गांव थे, वहां हमने पाया कि ग्रामीण लोगों ने गांव और जिले के प्रशासन तंत्र के साथ मिलकर के वापस आ रहे प्रवासी श्रमिकों के रहने, उनके खाने, उनके क्वारंटीन, इन सब का बड़ा अच्छा इंतजाम किया। तो अक्सर इन्हें रहने के लिए जैसे वहां पंचायत भवन है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है, कुछ कभी कभी तो ट्राइबल गांव में जो मुंडा है, जो मेन लीडर है, उसके घर में भी रहने का इंतजाम किया जाता रहा। और उनके उनके परिवारों की काउंसलिंग भी की कि क्यों 14 दिन की क्वारंटीन की जरूरत है, मास्क के उपयोग के बारे में बताया। और जैसे झारखंड में तो एक हमारा परियोजना है झारखंड में ट्राइबल एरियाज में, वहां तो परियोजना की शुरुआत में लगभग 150 गाँव में इस तरह का काम किया गया, जहाँ इस तरह की सपोर्ट वहाँ के जो समूह थे, जो संगठन थे, उन्होंने प्रदान किया, वापस आ रहे प्रवासी मजदूर थे। दूसरा हमने ये देखा कि ये काम सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर नहीं किया गया, बल्कि बाकायदे प्रोफेशनल तौर पर किया गया। तो मतलब ये कि जो स्वयं सहायता समूह है, जो फेडरेशन है, जो प्रोड्यूसर ग्रुप है, या इस तरह के जो भी संगठन है, जो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इनको प्रशासन के तरफ से प्रोफेशनली इंगेज किया गया। तो इसलिए बहुत ही अच्छे और बहुत सुचारू रूप से ये हॉट कुक मील्स भी और बाकी जो उनके लिए रहने का प्रबंधन भी बहुत अच्छा कर पाए। आजकल जो स्थिति है उसमें हमें ये जानकारी मिल रही है कि इन एरियाज में प्रदेश सरकार अपने विभिन्न तंत्र के माध्यम से, और जिसमें इफैक्ट के जो परियोजनाएं हैं उनके भी जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं, उनके द्वारा प्रवासी मजदूरों का सर्वे करवा रहे हैं, जिससे वो ये समझ सके कि इनमें से कितनी की रुचि रुकने में है, कितनी की रुचि लौटने में है, ये कौन से नए कौशल लेके आ रहे हैं। जो लोग कृषि और श्रम से जुड़ना चाहते हैं उनमें से किनको जॉब कार्ड नहीं है, और उनको बनवाने में मदद भी की जा रही है। इस तरह से प्रयास तो जारी है, पर जब इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी, जो कि अब आजकल पिछले कुछ दिनों में बढ़ती जा रही है, तो स्थिति क्या होगी इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
तो इस सब में क्या इफेड की भी कोई भूमिका रही है, खासतौर से सरकार के साथ मिलकर क्या इफेड किस तरह से स्थानीय लोगों के बीच संक्रमण के डर से निपटने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को, आवश्यकताओं को संतुलित करने, वहाँ खाद्य सामग्री पहुँचाने, इस सब के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, क्या कुछ उदाहरण देकर समझाया जा सकता है इस बारे में?
हमारे पास तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं इनको मूल रूप से जैसे 2 या 3 कैटेगरी में करके आपको बताना चाहूंगी। तो एक तो आपदा प्रबंधन के जो एग्जांपल्स हैं कि आईपैड जो है वो तो ग्रामीण और कृषि विकास पे काम करता है, तो हम अक्सर सोचते हैं कि इनका स्वास्थ्य क्या लेना देना है। परंतु जब कोविड एक आपदा के रूप में उभरी तो हमने देखा, और हमें बहुत खुशी भी हुई, कि लगभग सभी परियोजनाओं ने तुरंत अपने कार्य में यथोचित बदलाव किया और सरकार के रिलीफ के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भागीदारी की। जैसे मैंने अभी बताया कि मास्क बनाना हो, ग्रामीण लोगों में कोविड के बारे में जानकारी देनी हो, या सूखा राशन बांटना हो, या हॉट कुक मील्स बनाने हो, या क्वारंटीन में मदद करना हो, तो जो रिलीफ ऑपरेशंस थे उसमें बढ़ चढ़ के, और वो इसलिए क्योंकि इफैक्ट के जो परियोजनाएं हैं उनमें एक बहुत बड़ा जोर दिया जाता है लोकल कम्युनिटी लेवल संगठन तैयार करने में, छोटे छोटे समूहों को और काफी सुदृढ़ किस्म के संगठन तैयार करने में। दूसरा जो हम देखें तो कृषि से जुड़े हुए अगर कार्यों में किस तरह से इफैक्ट की परियोजनाओं ने मिलकर काम किया, तो जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तब रबी की फसल की कटाई का समय था, तो कहीं बड़े मशीन और कहीं लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई। हमें लगा कि शायद रवि की कटाई हो ही नहीं पाएगी, पर परियोजनाओं ने सरकारी जो भी स्कीम्स चल रही थी उनका पूरा लाभ गरीब किसानों तक पहुंचाया। जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से छोटी छोटी मशीनों को गरीब किसानों को किराए पर लेने पर का प्रबंध किया। इससे क्या हुआ कि एक तो उनके अपने संगठन थे, इन्होंने किराए पर मशीन ली, उससे समय पर ये अपनी फसल की कटाई कर सके। दूसरे उनके स्टोरेज का भी इंतजाम हो सके, क्योंकि छोटी छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में पर भी काफी जोर रहता है इफेक्ट के परियोजनाओं में। मार्केटिंग के लिए बहुत अलग अलग वैकल्पिक आउटलेट्स पर भी काम किया गया। महाराष्ट्र में जो ग्रामीण स्वयं सहायता समूह थे उन्होंने शहरी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सब्जियों को सीधे उपभोक्ताओं के पास पहुंचाना शुरू किया। उससे उनका नुकसान भी नहीं हुआ और पहले से अच्छे दाम भी मिले। उत्तराखंड के किसान जब नॉर्मली अपना सारी सब्जियां वो दिल्ली के मार्केट्स तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब वो ये नहीं कर पाए तो उन्होंने परियोजना के माध्यम से लोकल जो मार्केटिंग आउटलेट्स थे वहां इनको बेचना शुरू किया और ताजी सब्जियों का एक नया मार्केट खड़ा कर दिया। साथ ही साथ वहां की सरकार ने डिसाइड किया कि जो ये प्रवासी लौट रहे थे उनको ड्राई रेशन के साथ साथ ताजी सब्जियां भी दी जाए। तो इस तरीके से 5 हफ्तों में, मतलब समझिए कि अप्रैल के महीने से लेकर के मई के पहले हफ्ते के बीच में, लगभग 2,500 किसानों ने 30 लाख रुपए का मुनाफा कमाया सिर्फ सब्जियों को बेच के। जो कि सब्जियां हम लोग सोच सकते थे कि शायद खराब हो जाती है इस दौरान। कुछ इलाकों में जैसे उत्तर पूर्व के इलाके हैं जहां अदरक हल्दी मिर्च इत्यादि की रोपाई का समय चल रहा था, वहां पर यह सुनिश्चित कराया गया कि समय से किसानों को उनके खेत तक या उनके घर तक बीज इत्यादि पहुंचा दिए जाए। इसमें किसानों के लोकल संगठनों का बड़ा फायदा हुआ।
इफेड ने COVID-19 के लिए रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी भी शुरू की है, ये क्या है और ये कैसे ग्रामीण आजीविका में सुधार लाने और उन्हें खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगी?
तो ये जो इफेक्ट की रूरल पुअर स्टिमुलस फैसिलिटी है, ये मुख्य तौर पर 4 बातों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है कि किसानों को खेती के लिए इनपुट सप्लाई चाहिए और इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, जैसे कि इनका उत्पादन लगातार चलता रहे और किसान अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, ये तो पहली बात। दूसरी बात, किसानों को बाजार का एक्सेस भी चाहिए जिससे वो अपने उत्पाद बेच सकें और अपनी जरूरत का सामान खरीद सकें। तीसरा ये कि किसानों और लघु उद्यमियों को, जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को, उनको फाइनेंस भी चाहिए, उनको वित्त की सहायता की जरूरत है। और चौथा, किसानों को या और जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको समय पर सही जानकारी या इंफॉर्मेशन भी चाहिए। इन चारों मुद्दों को नजर में रखते हुए ये फैसिलिटी तैयार की गई, क्योंकि ये इस दौरान कोविड के सिचुएशन में इन चार, वैसे तो किसानों को हमेशा ही इन चीजों की जरूरत होती है, लेकिन इस दौरान इन चीजों की जरूरत तब बढ़ गई। तो ये जो फैसिलिटी है, ये एक फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, एक वित्त पोषण की सुविधा है, इफेड के सभी मेंबर स्टेट्स के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआत लगभग $4 करोड़ के सीड कैपिटल से की गई है और इफेड $20 करोड़ एडिशनल मोबिलाइज करने की दिशा में कार्यरत है।
तो जाहिर है भारत इतना बड़ा देश है और कोविड संकट इस वक्त बहुत बड़ा है जो प्रभावित कर रहा है पूरे देश को, तो भारत में जो खाद्य प्रणालियां हैं और कृषि हैं उस पर वर्तमान कोविड संकट का क्या असर पड़ रहा है?
130 करोड़ के देश में कहीं भी खाने पीने को लेकर कोई भारी कमी या अफरा तफरी नहीं मची, ये एक बड़ा अचीवमेंट हम मान सकते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कुछ सब सेक्टर्स हैं जिन पर कोविड का बहुत असर पड़ा, जिन लोगों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। मैं दो तीन सेक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगी। एक तो लाइफ स्टॉक, खास करके जो मुर्गी पालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं, इनका भारी नुकसान हुआ। दूसरा, इसी तरह जो फूलों की खेती करते हैं और जो सब्जी की खेती करते हैं, इन लोगों पर भी बड़ा असर रहा कोविड का। ये वो सब सेक्टर्स हैं जिनका योगदान किसानों की आय को दुगना करने में बहुत अधिक है। तो इन किसानों के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाने बहुत जरूरी है, इनका आत्मविश्वास को बढ़ाने की बहुत जरूरत है क्योंकि बड़े मुश्किल से ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर छोड़ के ये काम शुरू करते हैं। दूसरा एक और बात वो ये कि सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों में हमने थोड़ा कंजर्वेशन और या जो संवर्धन का कल्चर भी हमने देखा है कि ये थोड़ा लौटा है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पाया कि मिजोरम में हमारा एक परियोजना है, वहां पे हमने देखा कि किसान अब चाहते हैं कि जो झूम फैलो एरिया होता है वहां, झूम एक टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट में कई जगह किया जाता है अभी, कि वो चाहते हैं कि वो एक कुछ एरियाज में अब कसावा की जो एक किस्म का कंद है उसकी वो खेती करें, जिससे कि उन्हें और जानवरों दोनों को एक एडिशनल खाद्य सामग्री मिल सके जो आपदा की स्थिति में उनके काम आ सके। तो एक तरीके से हमारे माइंडसेट में थोड़ा कंजर्वेशन का कि एक माइंडसेट हमारा डेवलप हो रहा है कि वैसे तो पीडीएस सिस्टम है, लोगों को खाने पीने की आपूर्ति हो रही है, लेकिन लोग थोड़ा अपने प्रति खुद भी जागरूक हो रहे हैं। फिर जो कोविड की वजह से जो मैंने कहा कि दो तीन फायदे भी हुए हैं, पहला ये कि लोग साफ सफाई पर अधिक ध्यान देने लगे हैं, कंज्यूमर्स ये डिमांड करने लगे हैं। दूसरा ये कि लंबी दूरी के मार्केट्स की जगह किसानों को अब छोटे छोटे समूह पास के छोटे छोटे शहरों और कस्बों में डायरेक्ट मार्केटिंग भी करने लगे हैं। तीसरा हमने पाया कि ईनैम जिसको सरकार प्रमोट बहुत कर रही थी पहले से, लेकिन उसमें उतनी उनको सक्सेस नहीं मिली थी, पर उसका उपयोग पिछले दिनों काफी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मंडी में जाके बेचना और दूसरे तरीके से लोग आके खेतों में नहीं खरीद रहे थे, तो ईनैम का उपयोग काफी बढ़ा है। झारखंड में मैं अपने प्रोजेक्ट से बता सकती हूँ कि लगभग 3,500 ट्राइबल एरिया के किसानों ने पिछले दिनों ईनैम के माध्यम से अपने कुकर बेट्स को काफी बेचा है और काफी मुनाफा भी कमाया है।
तो क्या लगता है, संकट से क्या सीखा जा सकता है कि इसे भविष्य के अवसर में बदला जा सके?
तो अगर कृषि प्रबंधन की नजर से देखें तो दो तीन बातें सीखने को मिलती हैं और मैंने इस पर चर्चा की भी है आगे। एक तो हमें ये सीखने को मिला है कि सामुदायिक संगठन की शक्ति और उपयोगिता निखर के आई है। जहां भी किसान या महिलाएं छोटे छोटे समूहों में संगठित थे, वहां इनको ट्रेनिंग देना, मार्केट से जोड़ना, रिलीफ के काम से जोड़ना बहुत ही आसान था और ये फ्रंट लाइन पे थे, तो इसको और वृहद स्तर पे करने की और इसकी क्वालिटी पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे संगठन आपदा से लड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, ये चीज ये उभर करके जरूरी है। दूसरी, ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे बुनियादी ढांचों की आवश्यकता भी उभर के आई है, ये चाहे कृषि उत्पाद के एकत्रीकरण के लिए हो, टेम्पररी मार्केटिंग आउटलेट के तौर पर काम करें, बीज या और इनपुट्स के भंडारण के लिए हो, या और किसी भी काम के लिए हो, इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इसमें भीड़ भी नहीं जुटती है, ये लो कॉस्ट भी होते हैं, इनका मेंटेनेंस भी आसान होता है, जो सामुदायिक संगठन को सौंपा भी जा सकता है। तो ये भी एक निकल के आया है कि ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे बुनियादी ढांचों पर जोर देना जरूरी है। ये कृषि और छोटे कृषकों के नजर से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा ये कि ग्रामीण विकास के तार शहरी विकास से जुड़े हुए हैं, रूरल को अर्बन से जोड़ा जाए, तो छोटे छोटे अर्बन क्लस्टर्स तैयार किए जाए, छोटे छोटे कस्ब को डेवलप किया जाए और ये माना जाए कि जो हमारे किसान है उनकी प्रगति अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है।